ఓం శాంతి. సబ్సే బడీ కళా మన్ కో ప్రభు మే లగానా. ఇస్ సంసార్ మే విభిన్న క్షేత్రో మే ఏక్ సే ఏక్ బఢ్కర్ కళాకార్ పాయే జాతే హై. లేకిన్ సబ్సే బడీ కళా కహతే హై మన్ కో ప్రభు మే లగానా, యే హై కళా. కోయి పూచేగా కేసే యే సబ్సే బడీ కళా హై బతాయే. తో దునియా మే మన్ కో కంట్రోల్ కర్నా యే అసంభవ లోగో నే కహా హై. మన్ కో సబ్సే బడా కహతే హై మన్ హీ దేవతా, మన్ హీ ఈశ్వర్, మన్ సే బడా నా కోయి. ఏసే శక్తిశాలీ మన్ కో సర్వశక్తివాన్ పరమాత్మా పర్ ఏకాగ్ర కర్నా యే బహుత్ శక్తిశాలీ ఆర్ సర్వశ్రేష్ఠ కళా కహలాతీ హై. ఆర్ యహీ కళా ఏక ఏసీ కళా హై జో హమే చఢ్తీ కళా కీ అనుభూతి కరాతీ హై ఆర్ సోలా కళా సంపూర్ణ బనాతీ హై. ఏసీ ఆర్ కోయీ భీ దునియా మే కళా నహీ హై జో హమే సోలా కళా సంపూర్ణ బనాతీ హై. తో మన్ కో ప్రభు మే లగానా ఇస్కో హీ మన్ మనా భావ కే మంత్ర కా జాప్ కర్నా కహతే హై. ఇస్ జాప్ కో జపనే సే హమారే వికర్మ భస్మ హోతే హై. హమారీ బ్యాటరీ ఆత్మా కీ చార్జ్ హో జాతీ హై ఆర్ పరమాత్మ ప్యార్ కా హమ్ భర్పూర్ ఆనంద లేతే హై. ఇస్లియే యే కళా మేరే పాస్ హోనా బహుత్ జరూరీ హై. దునియా మే జో బహుత్ బడే లోగ్ హోతే హై వో క్యా కర్తే హై, వో ఫ్యాక్టరీ ఖోల్ దేతే హై ఆర్ మాల్ ఖుద్ ఖా లేతే హై ఆర్ బచా హువా జో భీ దుకాందార్ హోతే హై యా సేల్స్మ్యాన్ హోతే హై ఉన్కో మిల్తా హై. तो हम सभी बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं. एक बार ताली बजाओ जोरदार. हम इस संसार में बहुत महान आत्माएं हैं, बहुत बड़े बाप के बड़े बच्चे कहलाते हैं. हमें भी बाबा ने हरेक को एक फैक्ट्री खोल के दी है, याद की फैक्ट्री. इस फैक्ट्री का ओनर है आत्मा, मैनेजर है बुद्धि और कर्मचारी है मन. जब मन कार्य करता रहता है तो एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई इस फैक्ट्री में होती है. दुनिया में तो ऐसी फैक्ट्री कोई भी नहीं है जिसकी कमाई एक सेकंड में अनेक पदमों की हो, कोई भी फैक्ट्री नहीं है. केवल बाबा ने हम बच्चों को वो खोल के दी है। बच्चे जितना चाहे कमाई कर लो, और दुनिया में जिसकी फैक्ट्री बहुत चलती है तो कहते हैं ये भगवान ने 24 घंटे ही क्यों बनाए दिन के, अगर ये दिन बड़ा होता तो और अच्छा होता, और कमाई कर लेते। 24 घंटे में 3 शिफ्ट करते हैं फिर भी उनका दिल नहीं भरता है। तो इस फैक्ट्री को भी हमें बहुत अच्छी तरह से निरंतर चलाते रहना है और स्वयं को खजानों से माला माल करते जाना है। इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं हैं योगी आत्माएं, जो भाग्य योगी आत्माओं को प्राप्त होता है उससे बढ़कर ऊंचा और इस दुनिया में कोई भी। योगी आत्माएं परमात्मा के नैनों का नूर बनते हैं, परमात्मा के नैनों के पलकों में सदा पलते रहते हैं। इससे ऊंचा और कोई संसार में भाग्य नहीं है। तो योगी आत्माओं के पास 2 कलाएं होती है जो किसी के पास नहीं होती है। पहली कला उनके पास होती है वो चतुर सुजान बाप के चतुर बच्चे होते हैं, माया दुश्मन के राज में रहकर दुश्मन से कभी भी धोखा नहीं खाते हैं, अपने मन और बुद्धि को दुश्मन से सदा सेफ रखते हैं। ये चतुराई उनके पास होती है। दूसरी कला, तीनों लोगों में सबसे जास्ती प्राप्ति कराने वाला ठिकाना है परम धाम में शिव बाबा की याद करना। उसी ठिकाने पर वो अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं और हर पल हर घड़ी अनेक पद्मों की कमाई करते रहते हैं। ये अकल उनसे होती है। साथ में जो चलने वाली अविनाशी कमाई है उसमें वो अपना समय और संकल्पों का खजाना यूज करते जाते हैं। इसलिए योगी आत्माओं को बुद्धिमान आत्माएं कहते हैं। अभी फैक्ट्री खोल के दी हैं। ये जो मन को प्रभु में लगाने की जो कला है, इस कला को अपने पास हासिल करना है तो उसके लिए आवश्यक है इस कला को आगे बढ़ाने में कौन सी समस्याएं आती हैं, कौन से विघ्न आती हैं, बाधाएं आती हैं, और उन बाधाओं को कैसे हटाया जाए, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो उस पर हम विचार करने जा रहे हैं। मन को प्रभु में लगाने की कला में आने वाली कौन सी बाधाएं होती है। सबसे पहली बाधा है अपने देह की स्मृति और दूसरों के देह का आकर्षण होना। ये हमारे मन को परमात्मा से दूर करती है। हमें अपने देह की स्मृति सदा रहती है, उसके कारण आत्मा का भान नहीं होता है और बाबा की याद नहीं आती है। सबसे जास्ती लगाव हमारा अपने देह से होता है। 24 घंटे हमारे साथ कोई नहीं रहता है, कितना भी नजदीक का संबंधी हो तो 5 घंटा 8-10 घंटा रहेगा, बाद में चला जाएगा दूर। लेकिन आत्मा के साथ 24 घंटा अपना देह रहता है, इसलिए देह के साथ बहुत गहरा लगता है। इसलिए कहते हैं जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा, जितना उतना हिसाब है। 25% अगर हम अपने देह से न्यारे होते हैं तो 25% ही हमें परमात्मा की कंपनी मिलेगी। बॉडी की कंपनी छोड़ते हैं तो गॉड की कंपनी हमें मिलती जाती है। इसलिए देह में रहते हुए विदेही स्थिति की तपस्या करना है। माताएं हलवा बनाती है ना गुजरात की, हाँ जी हलवा आता है बनाना, बोलो ना बड़ौदा वाली माताएं, आता है हलवा बनाना? अच्छा बनाती है, कैसा बनाती बताओ? कढ़ाई लिया, उसमें घी डाला, आटा डाला, भूना, फिर दूध डाला और चीनी डाली। हाँ पूनम बहन, किनारे छूट गए माना, हलवा पक गया। तो हमें वो आटे का हलवा नहीं बनाना है, आत्मा को देह रूपी कढ़ाई में योग की अग्नि से पकाना है। और जब आत्मा के देह रूपी कढ़ाई से सारे किनारे छूट जाते हैं, माना हल हुआ, हलवा पक गया। ये हलवा हमें बनाना है, आत्मा का हलवा बनाना है, संपूर्ण बनाना है योग की अग्नि में। देह रूपी कढ़ाई से बिल्कुल बुद्धि हमारी डिटैच हो, माना जिस कार्य के लिए मैं आत्मा ही संसार में आई थी उसका हल हुआ, हलवा पक गया। दूसरी बात है, दूसरों के देह के तरफ आकर्षण होने का हमारा बहुत कड़ा संस्कार 63 जन्मों का है। इसलिए जो भी सामने आता है उसके भ्रुकुटी में हमें चमकता हुआ सितारा देखना है। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जो भी सामने आता है उसको आत्मा ही देखना है। ये गुप्त अभ्यास करते रहेंगे तो देह के तरफ आकर्षण जो होता है वो भी मिटता जाएगा। आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक पिता की हम संतान हैं, ऐसा अभ्यास पक्का होने से हमारा किसी के तरफ बुद्धियोग नहीं जाता है। मन मन मना भाव का जाप करता रहता है। दूसरी बाधा, मन को प्रभु में लगाने के कला में दूसरी बाधा है, पुरानी दुनिया के तरफ आकर्षण होना और पुराने पदार्थों के तरफ आकर्षण होना, ये दूसरी बाधा है। हमें ये चेक करना है, 5000 वर्षों तक हमने इस धरती पर पाठ बजाया, भरपूर आनंद लिया, इन तत्वों से बहुत सुख हमने अनुभव किया, अभी इस पुरानी दुनिया में रखा क्या है? ये पुरानी दुनिया को हमें गेस्ट हाउस समझना है, रेस्ट हाउस हमारा परम धाम है, बाबा का घर। गेस्ट हाउस कितना भी बढ़िया क्यों न हो, चमचमाते हुए सोने के दरवाजे हो, खिड़कियां हो, फिर भी आपको जो गहरी नींद आएगी वो अपने घर में ही आएगी, गेस्ट हाउस में नहीं आएगी। इसलिए हम सभी रिटर्न जर्नी पर हैं, तो इस गेस्ट हाउस से हमारा बुद्धियोग न्यारा होना चाहिए, उपराम होना चाहिए। इसलिए हमें इस पुरानी दुनिया में और इस पुराने देह में मैं आत्मा गेस्ट हूं ऐसा अनुभव करते जाना है, तो इस पुरानी दुनिया से भी हमारा लगाव हटता जाएगा। कृष्ण को हमेशा ग्लोब पर बैठा हुआ दिखाते हैं, टांग पर टांग लेटा हुआ है रखकर। उसका नाम क्या है? मोहना। ब्रह्मा बाबा की ये बहुत ऊंची स्थिति है। सारा जो दुनिया का ग्लोब है, इस पुरानी दुनिया से और पुराने व्यक्ति वैभव से बाबा का रिंचक मात्र भी मोह नहीं था, इसलिए उनका नाम मोह ना सतयुग में कृष्ण को देते हैं। तो हमें भी ब्रह्मा बाप समान निर्मोही बनना है, नष्ट मोहा बनना है। और पुराने वैभव से भी हमारा बहुत लगाव होता है। अच्छी चीज कोई भी मुझे अपने पास नहीं रखना है, क्योंकि अंतिम समय वही हमें याद आएगी, बाबा से योग हमारा टूट जाएगा। इसलिए जो पुराने दुनिया के वस्तु और वैभव हैं, कितने भी बढ़िया क्यों न हो, वो अल्पकाल के लिए बढ़िया है और इनका विनाश होने वाला है। कितनी भी बढ़िया चीज हो, सतयुग में कोई भी जाने वाली चीज नहीं है। अब इनसे क्या मोह लगाए, ऐसा हमें समझना है। और वस्तु वैभव से भी हमने किनारा करना है। तीसरी बात, मन को प्रभु में लगाने की कला में बाधा डालने वाली तीसरी बात है, कोई ना कोई देह का संबंध अपने तरफ खींचता है। तो देहधारियों से कोई ना कोई संबंध हमें अपने तरफ खींचता है, क्योंकि हमने 83 जन्मों का पाड़ बजा कर यहां बैठे हैं। अनेक आत्माओं के साथ पॉजिटिव अकाउंट हमारा है और अनेक आत्माओं के साथ पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी अकाउंट है। वो सारा हिसाब का जो किताब बहुत बड़ा बना हुआ है, उसको हमने खत्म करना है घर जाने के पहले। उसके लिए बाबा हमें हर रोज ज्ञान और योग की पालना देते हैं, ताकि ये हिसाब का किताब हमने जीरो करना है। इसलिए किसी भी संबंध के पीछे हमारी बुद्धि न जाए। इसलिए भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करने का अभ्यास हमें बढ़ाते रहना है, क्योंकि शिव बाबा का ही गायन पारसनाथ के रूप में करते हैं। पारसनाथ अर्थात पा रस नाथ, वही एक ऐसे नाथ हैं जिससे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। और किसी में वो ताकत नहीं है विभिन्न संबंधों की अनुभूति कराने की, किसी में वो ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है। इसलिए बाबा के साथ सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों की अनुभूति हमें करते जाना है, क्योंकि बिंदी समझकर बिंदु बाप को याद करते हैं, एक घंटा दो घंटे के बाद बोर हो जाता है। ऐसा लगता है क्या बिंदी बिंदी लगा के बैठे हैं। ये मनुष्य का नेचर है। आपको कोई भी चीज बढ़िया लगती है, वही चीज बार बार आपको खिलाते हैं, आप कहेंगे ये क्या वही वही चीज ला रहे हैं, अभी हटाओ इसको, दूसरा चेंज करो कुछ। तो ये मनुष्य का नेचर है, वो हमेशा निवने चाहता है। इसलिए बाबा सामने से कहते हैं 24 घंटे मैं आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूं। कितना घंटे? 24 घंटे। यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट इज अप टू यू। मैं अपनी तरफ से आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूं, अभी आपके हाथ में है कितना मुझे यूज करना है और कितना नहीं करना है। इसलिए ये मौका हमें सारे क्लब में एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं 200 नाखून का जोर लगाकर इस योगाभ्यास में अपनी प्रोग्रेस करो। 200 नाखून का जोर लगाना अर्थात 10 नाखून पैर के और 10 नाखून हाथ के, अर्थात एड़ी से चोटी तक जितना दमखम है पूरा लगाना और उसमें थोड़ी भी मार्जिन नहीं छोड़ना। जो होशियार बाबा के बच्चे होते हैं उनकी निशानी क्या होती है? होशियार बच्चों की निशानी क्या है? होशियार, वो होश में रहते हैं, चौकन्ना रहते हैं। बाबा का क्या इशारा है, समय का क्या इशारा है, दुनिया का क्या इशारा है, होश में रहकर अपनी प्रसाद की रफ्तार को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। वो कभी भी दुश्मन से धोखा नहीं खाते हैं। इसलिए हम सभी बाबा के होशियार बच्चे हैं। तो होशियार का मतलब ही है मौके पर चौका या छक्का लगाना, बाकी दूसरी बात ही नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम कमाई हमें करना है। क्रिकेट आपको अच्छा लगता है? बोलो अच्छा लगता है ना भाई?
हमें वो क्रिकेट नहीं देखना है, वो क्रिकेट हमारे जो खजाने हैं मूल्यवान, समय और संकल्पों को बर्बाद करते हैं। हमें अपना क्रिकेट खेलना है। कौन सा? मन रूपी संकल्प रूपी बॉल है, इस मैदान में 10 खिलाड़ी मौजूद हैं, 5 तत्व और 5 विकार रूपी 10 खिलाड़ी मौजूद हैं। मेरा जो मन से संकल्प रूपी बॉल निकलता है, किसी की ताकत नहीं है उसको रोकने की। मान रूपी संकल्प रूपी बाल अगर इस साकारी दुनिया से पार जाता है, माना चौका हो गया। और मान से संकल्प रूपी बॉल सीधा परम धाम में बाबा के पास गया, माना छक्का हो गया, मैक्सिमम कमाई हो गई। ऐसा क्रिकेट हमें खेलना है और कमाई करके खुद को माला माल करना है। तो इसलिए कमाई करने में ही हमारी बुद्धि हमेशा व्यस्त रहे। इसलिए कोई भी संबंध हमें अपने तरफ न खींचें, इस पर विशेष ध्यान देना है। इसलिए सारे संबंध बाबा के साथ अनुभव करते जाना है, जिससे कोई भी संबंध हमें अपने तरफ नहीं खींचेगा। चौथी बात है मन को प्रभु में लगाने की कला को हम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए मन को सदा लाइट रखना सीखें। जब मन थोड़ा भी बोझिल होता है वो काम करना बंद करता है, मन मना भाव का मंत्र का जाप करना छोड़ देता है। इसलिए मन को हमें मित्र बनाना है और मन को सदा हल्का रखना है।
उसके लिए कुछ युक्तियां आपको बताता हूं। पहली युक्ति है हलकि अर्थात है लकि। मन और बुद्धि को जो हल्के रखते हैं वास्तव में वो लकि आत्माएं हैं, क्योंकि मन बुद्धि हल्की रहती है तो ऊपर बाबा के पास परम धाम में जाकर बैठ जाती है और हर पल हर घड़ी अनेक पद्मों की कमाई करती रहती है और अपने भाग्य का सितारा चमकाती रहती है। तो पहली युक्ति है मन को सदा हल्का रखने के लिए समान में स्थित रहकर कर्म क्षेत्र में हम उतरे, क्योंकि जब हम कर्म क्षेत्र पर होते हैं तो तीन बातों का प्रभाव हमारे मन बुद्धि पर होने की संभावना होती है। पहली बात, जो हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है। दूसरी बात, जो हमारे कर्म साथी होते हैं उनके स्थिति का प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है। तीसरी बात, वहां का जो वातावरण होता है उस वातावरण का प्रभाव भी आत्मा पर पड़ सकता है। तीनों बातों के प्रभाव से हमें निर्लिप्त रहना है तो आत्मा पर ईश्वरीय नशे का प्रभाव होना जरूरी है, और उसके लिए समान का अभ्यास करते हैं तो सारा दिन मन बुद्धि ईश्वरीय नशे में झूमती रहती हैं और बाबा को याद में मस्त रहती हैं। दूसरी युक्ति है, मैंने प्रकाश मणि दादी जी का इंटरव्यू लिया था 1995 में। दादी जी को पूछा, दादी जी आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर चलती हैं, फिर भी आपके चेहरे पर कभी मैंने टेंशन या बोझ का चिन्ह नहीं देखा। इतने सालों में, 30 साल मैं दादी जी के साथ रहा मधुबन में, तो दादी जी ने कहा, देखो भैया, सबसे पहली बात, मैं सब खुद को निमित्त समझती हूँ, मैं केवल कठपुतली हूँ, मेरी बुद्धि रूपी रस्सी बाबा के हाथ में है, बाबा जैसे नचाते हैं जैसे वैसी मैं सेवा करती हूँ, निमित्त समझती हूँ। दूसरी बात, मेरे एक कंधे पर शिव बाबा रहता है और दूसरे तरफ ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में रहता है। दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस मेरे पास सदा अवेलेबल रहते हैं, उसके कारण कोई भी समस्या आती है, कोई भी विघ्न आता है, उनकी मदद से वो चुटकी में पार हो जाता है, इसलिए मैं सदा लाइट रहती हूँ। हमें भी ऐसा ही अनुभव करना है कि बाप दादा मेरे साथ हैं और उनकी मदद मुझे मिलती ही रहती है। जो भी लौकिक अलौकिक जिम्मेदारी हमारी होती है, लौकिक भी जिम्मेदारी निभानी होती है और बाबा की सेवा की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जिम्मेदारी का बोझ बाबा के कंधे पर हमें रखना है और खुद को छोटा बच्चा या बच्ची अनुभव करना है, हल्के अनुभव करना है। मैं कुली नहीं हूँ, मैं रॉयल कुल वाला हूँ। हम सभी रॉयल कुल वाले हैं। जो रेलवे स्टेशन पर लाल कपड़े वाले लोग होते हैं ना, कुली, सारा दिन बोझ ढोते रहते हैं। अगर किसी काम से उनको काम नहीं मिलता है रेलवे स्टेशन पर, घर में रहते हैं, कहते आज मेरा बदन टूट रहा है, दर्द हो रहा है, क्यों, आज मुझे बोझा ढोने के लिए नहीं मिला है। तो इसलिए एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, मैं कुली नहीं हूँ, मैं रॉयल कुल वाला हूँ। जो रॉयल कुल वाले होते हैं कभी भी वो बोझ नहीं ढोते हैं, वो हमेशा हल्के रहते हैं। तीसरी युक्ति, सदा लाइट रखने के लिए फरिश्ता स्वरूप में टिक कर हमें कर्म करते जाना है। स्थूल शरीर समझकर कर्म करते हैं तो ये स्थूल शरीर आखिर मशीनरी है, ये थक जाती है कुछ घंटे के बाद। लेकिन लाइट का शरीरधारी फरिश्ता समझते हैं तो लाइट कभी थकती नहीं है। इसलिए फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हम कर्म करते रहेंगे तो सदा हल्के रहेंगे, अथक बनकर सेवा में मस्त रहेंगे। और चौथी युक्ति है, नथिंग न्यू का पाठ हमें बहुत पक्का करना है। बाबा ने कहा इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होंगे उनके जीवन में नथिंग न्यू का पाठ बहुत नेचुरल होगा। हम यहाँ इस हॉल में ऐसे बैठे हैं, पहली बार बैठे हैं क्या? अनगिनत बार बैठे थे इसलिए अभी बैठे हैं, और अनगिनत बार बैठते रहेंगे। भाई ताली तो बजाओ जरा, कमाल है। भगवान के घर में बैठे हैं और भगवान की पालना हमें मिल रही है। कितने भाग्यशाली हम आत्माएं हैं, सारे संसार को भाग्य बांटने वाला ही मेरा बाप बन चुका है। कितने भाग्यशाली है कि नहीं? सारा संसार उसका गुणगान गाता है और वो हमारा गुणगान मुरली में करता रहता है। बाबा कितना भाग्य हमारा ऊंचा है। और मन को प्रभु में लगाने की कला को बढ़ाने के लिए पांचवी युक्ति है, मन बुद्धि संस्कार तीनों की दरबार हमें रात को लगानी चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा लगाते थे। मन बुद्धि संस्कार इन तीनों ने आपस में मिलकर सारे दिन भर में बहुत अच्छा काम किया या नहीं किया, ये हमें तीनों से पहुंचना है, दरबार लगाना है। अगर कोई कंप्लेन होगी तो हमें उसको सावधानी देनी है और कल से तीनों को मिलकर काम करना है और फैक्ट्री को बहुत अच्छी तरह से चलाते जाना है। इससे क्या होगा, तीनों शक्तियों का आपस में सहयोग मिलता जाएगा और उनकी यूनिटी होगी और उसके कारण हम अपना सेवा का जो बोझ है, सेवा की जो जिम्मेदारी है, अच्छी तरह से निभाते जाएंगे। और इसको आगे बढ़ाने के लिए सुंदर युक्ति है, योग का चार्ट रखते जाना। मैं 1973 में पहली बार हिस्ट्री हॉल में बाप दादा से मिल रहा था तो बाबा ने मुझे पर्सनली वरदान दिया था, अगर आप अपने ईश्वरीय जीवन में सदा आगे बढ़ना चाहते हो तो याद का चार्ट लिखते जाना। अब मैं एक साल का बच्चा था बाबा का, याद का चार्ट क्या होता है ये भी मुझे पता नहीं था, टीचर को पूछता था, टीचर भी नहीं बताए। फिर जब मैं मधुबन में आया 76 में, मैंने दादियों के क्लासेस और बाबा की मुरली के आधार पर याद का हर घंटे का चार्ट लिखना शुरू किया। अलग अलग एक्सरसाइज मन बुद्धि को देकर चार्ट रखना शुरू किया तो एक साल के बाद ही बाप दादा से मिलना हुआ तो बाबा ने मुझे वरदान दिया, आपका योग का चार्ट अच्छा है और आपका नंबर पांडवों में आगे है। इतना बड़ा वरदान बाबा ने मुझे दिया था, क्योंकि चार्ट हमारी मन और बुद्धि जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उन पर नियंत्रण और अनुशासन पूर्णतया कैसे करें ये कला सिखाता है। दूसरी बात, चार्ट इन दोनों शक्तियों को डिसिप्लिन में रखकर कैसा उनका प्रयोग करे जाए वो भी हमें सिखाता है। और चाट इन दोनों शक्तियों को सारे दिन भर में व्यस्त कैसे रखें और उनके द्वारा अविनाशी कमाई कैसे बढ़ाते जाएं, ये भी हमें सिखाता है। इसलिए कहते हैं चार्ट्स मेक्स यू स्मार्ट। तो आत्मा की उन्नति करने के लिए चार्ट रखना ये बहुत अच्छा साधन बाबा ने बताया है। चार्ट कभी अच्छा होता है तो हमें खुशी होती है, कभी अच्छा नहीं होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन हमें उसको छोड़ना नहीं है, अपने मन और बुद्धि पर बहुत अच्छी तरह से निरीक्षण करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए ये साधन हमें बहुत मदद करता है। अभी मन को बाबा की याद में लंबे समय तक बिजी रखने के लिए जब हम परम धाम में बाबा के पास बैठते हैं, यथार्थ याद किसको कहते हैं? यथार्थ याद माना परम धाम में शिव बाबा ज्ञान सूर्य के रूप में बैठे हैं और मैं आत्मा ज्योति बिंदु आत्मा उनके समक्ष बैठी हूँ, मेरा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर टिका हुआ है और मन मन मना भव का जाप कर रहा है, इसको कहते हैं यथार्थ याद। इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन ये लंबे समय तक अच्छी तरह से करने के लिए जब हम बाबा के पास बैठते हैं तो तीन बातों पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। पहली बात, बाबा के पास जब हम बैठते हैं तो कभी भी हमें हिचकना नहीं है। कई बार हम सोचते हैं बाबा तो पवित्रता के सागर हैं, मुझ आत्मा पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज हैं, मैं बाबा के समीप बैठ सकती हूँ या नहीं, कभी हमारा मन संकोच करता है। इसलिए हमें बड़े ठाट से, बड़े मस्ती से, निसंकोच होकर बैठना है, क्योंकि बाबा ने हमें बच्चे के रूप में स्वीकार किया है। बच्चा कैसा भी हो उसको अपने बाप की गोदी में ही नहीं, कंधे पर भी बैठने का अधिकार होता है। इसलिए बड़े ठाट से बाबा के पास बैठ जाएं। दूसरी बात, बाबा ने हमें आत्मा रूपी सजनियों के रूप में स्वीकार किया है। सजनी कैसे भी हो उसको अपने साजन के पास बैठने का पूरा अधिकार होता है। इसलिए हमें बड़े मस्ती से बाबा के बाजू में बैठना है। दूसरी बात, बाबा से हमें मांगना नहीं है। भगत माना भिखारी, बच्चे माना अधिकारी। कई बार माताएं अमृत वेले बाबा से मांगती रहती है, बाबा आप तो शक्तियों के सागर हैं, मुझे थोड़ी शक्ति दो ना बाबा, आपको कुछ कमी हो गया? नहीं होगा बाबा। तो हमें मांगना नहीं है, अधिकारी रूप में हमें बैठना है, बाबा से लूटते जाना है खजाने। बाबा कहते मेरे पास इतने खजाने हैं, सारे संसार की आत्माओं को बांट दूं तो भी वो खुटते नहीं, मैं करूं क्या इन खजानों का? ये सारे खजाने आपके लिए हैं। ताली भी नहीं बज रही, कमाल है। तीसरी बात, जब बाबा के पास हम बैठते हैं तो हमारी मन की बैठक साधारण ना हो। बाबा सर्वशक्तिवान हैं तो मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा ज्ञान सूर्य हैं, मैं भी आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ऐसे शक्तिशाली स्थिति में बैठना अर्थात आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज मैक्सिमम होना। तो जब आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो बाबा जो स्पिरिचुअल पावर हाउस हैं, उनसे बहुत शक्तियां आत्मा खींचती है, अपने में ग्रहण करती है। परिणाम स्वरूप शक्तिशाली योग की अनुभूति हमें होती है। इसलिए विशेष अमृत वेले और नमा शाम के योगाभ्यास में ऐसी शक्तिशाली मन की बैठक हमारी हो, इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। तो ये मन को प्रभु में लगाने की कला में हम एक्सपर्ट बनते जाएंगे और अपने ब्राह्मण जीवन में भी आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अब इस कला को और तीव्रता से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना जरूरी है? हमारे दिल में बाबा के प्रति प्यार बढ़ता रहे। हमारा प्यार बाबा से है, इसमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन प्यार हड्डी प्यार हो, जैसा दादियों का बाबा के साथ था, रग रग में, रोम रोम में उनके परमात्म प्यार समाया हुआ था, ऐसा हड्डी प्यार हमारा बाबा के प्रति जब बढ़ता है तो जहां प्यार वहां बुद्धि की तार जुट जाती है, जोड़नी नहीं पड़ती है। जैसा प्यार वैसी तार जुड़ जाती है, जितना प्यार उतनी देर तक बुद्धि रूपी तार जुटी रहती है और उसके पीछे मन भी मन मना भव का जाप करता रहता है। इसलिए सारे दिन भर में हमें इसी बात पर ध्यान देना है कि मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल वो हैं जब मैं आत्मा परम धाम में बाबा की याद में टिकती हूँ। ये पल मेरे जीवन के सुनहरे पल हैं, सबसे खुशनुमा पल हैं, यही मेरी असली पूंजी है। इस पूंजी को हमने बढ़ाते जाना है। इसलिए बाबा के पास परम धाम रूपी पैलेस में बैठे रहें, डटे रहें और मनमना भाव का जाप करते रहें। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं मनमना भाव के मंत्र का जाप करने में रुचि कम हो जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, मध्याजी भाव का जो मंत्र है, जो बाबा हमें लड्डू देने जा रहा है 21 जन्मों की बादशाही का, वो हम भूल जाते हैं। इसके कारण मनमना भाव के मंत्र का जाप करने में रुचि थोड़ी कम होती है। इसलिए बाबा कहते हैं बीच बीच में मध्याजी भाव के मंत्र का भी जाप करते रहो। दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को भी याद करो। उससे क्या होगा? दिल में योगाभ्यास के लिए रुचि बढ़ती जाएगी और उसमें हमारी प्रोग्रेस होती जाएगी। इसलिए बस बाबा ही बाबा हम रटते रहें, जैसे बाबा कहते ए मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये गीत हमारा मन बार बार गाता रहें, क्योंकि अंतिम समय केवल बाबा की याद रहें और किसी व्यक्ति वैभव की याद न रहें। उसके लिए हमारा ये अभ्यास लंबे समय का होना जरूरी है। देखो बाबा ने आपको गोल्डन चांस दिया है, क्योंकि ये विश्व का जो ग्लोब है उस पर ये बाबा का स्थान है, ये सबसे पावरफुल स्थान है। यहाँ आना, योग तपस्या करना, बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव की पूंजी जमा करना, इस स्थान से पॉजिटिव अकाउंट बढ़ाते जाना, ये सतयुगी राजधानी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ अगर आप क्लोज आते हैं, क्लोज अनुभव करते हैं, तो सतयुगी राजधानी में भी समीप रहेंगे। इसलिए इस मौके का पूरा लाभ हमें लेना है और खुद को बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव से भरपूर करना है, क्योंकि बाबा का इशारा है अभी अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। ऑल माइटी अथॉरिटी के बाद दूसरी अथॉरिटी है अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी, वो मज आत्मा के पास होनी चाहिए, तभी अंतिम समय हलचल का समय होगा। हलचल में भी हम अचल रहेंगे, स्थिति हमारी अचल डोल रहेगी, और उस समय अनेक आत्माओं की सेवा करने की क्षमता भी हमारे पास होगी। इसलिए अलौकिक अनुभव को हमें बढ़ाते जाना है। अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर गहन योग की अनुभूति करने जा रहे हैं, इसलिए एक बार सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू। और सीधा बैठेंगे, अलर्ट होके बैठेंगे, मस्ती में मस्त होके बैठेंगे। ओम शांति। ईश्वरी रूपी चैतन्य दीपक में मैं निराकार आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जग मग रही हूँ, मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश दिव्यता की रोशनी चारों फैल रही है। मज आत्म ज्योति के चहुओं सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का ओरा अनुभव हो रहा है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ। सारे संसार को भाग्य बांटने वाले भाग्य विधाता भगवान, हर रोज मुरली में मेरे भाग्य के गीत गाते ही रहते हैं। मुझे अपने भाग्य पर नाज है, मैं आत्मा संसार में हीरो एक्टर हूं, इस बेहद ड्रामा के डायरेक्टर के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्टर से हर रोज मुझे श्रीमत के रूप में डायरेक्शन मिलता रहता है। जिससे मेरा जीवन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनता जा रहा है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रहे हैं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मोह आत्म ज्योति ने सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी प्यारी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाप दादा मोस फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा मुझे नैनों से इशारा दे रहे हैं, लाडले बच्चे इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब भी चाहो जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो, और स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करते रहो। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं आत्म ज्योति पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम। मेरे प्राणों से भी प्यारे मेरे प्राण आधार मेरे प्राण नाथ सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य नेत्र से देख रही हूं। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरी दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के सागर शिव पिता से अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की ज्वाला में मेरे पूर्व जन्मों के पाप भस्म होते जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। मेरा मन प्रभु में पूर्णतया लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट ज्योति सागर भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य, शक्तियों से भरपूर आत्म ज्योति, बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से उड़ती हुई वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं। और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य दीपक में विराजमान हो चुके हूं। मज शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की किरणें सारे विश्व में चारों ओर फैल रही है। वायुमंडल को वाइब्रेट करके शक्तिशाली बना रहे हैं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु हैं, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। ओम श्याम।